बजट हो चुका है, रेचल रीव्स ने अपनी बात रखी है, दुनिया ने प्रतिक्रिया दी है, और ऐसा लगता है कि यह एक भयानक नीरस बजट था। यह एक खोखला बजट था, एक ऐसा बजट जिसमें वास्तव में मितव्ययता दिखाई गई, एक ऐसा बजट जिसमें शहर को फायदा हुआ क्योंकि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया गया, और उसे धन और वहां होने वाले दुरुपयोग से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए था, और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को नुकसान हुआ। यह सबसे पहले एक विजन रहित बजट था, यह बहानों से बना बजट था, और इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से यहां हैं तो हम गहरे संकट में हैं। आइए स्पष्ट करें, रेचल रीव्स ने शहर को वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने खजाने से विचारों को इस तरह उड़ाया जैसे वे स्पैगेटी हों जो चिपकने के लिए दीवार ढूंढ रहे हों, और कुछ भी नहीं चिपक पाया। उसने जो भी सुझाव दिया वह उसके ऊपर ही फेंक दिया गया। शहर ने कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव जो कुछ क्रांतिकारी हो सकता था, उसे मूल रूप से खारिज कर दिया गया, न तो जनता द्वारा और न ही लेबर सांसदों या संसद द्वारा। लंदन शहर में सत्ता में बैठे लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, और रेचल रीव्स के लिए अपने ऑफिस में बैठकर एक मामूली बजट पेश करना काफी था। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं जोड़ा। उन्होंने किसी नए निवेश की घोषणा नहीं की जिससे इस देश में कोई बड़ा बदलाव आए। उन्होंने चुपके से मितव्ययता लागू की, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। हम जानते हैं कि शिक्षा और न्याय जैसे कुछ क्षेत्रों और स्थानीय प्राधिकरणों में सरकारी खर्च में कटौती होगी जिसका समाज के कुछ समूहों पर भारी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, विशेष शिक्षा की जरूरतों से जुड़े सभी लोग अब जानते हैं कि आने वाले सालों में यह पहले से भी ज्यादा गहरा संकट होगा, और यही असली कड़वाहट है। उन्होंने अपनी नाकामी की भरपाई के लिए टैक्स बढ़ा दिए, और लोग इस बात से बहुत नाराज हैं। लोग यह सब गिन रहे हैं और कह रहे हैं, अगर मैं ज्यादा भुगतान कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, और जवाब है कुछ भी नहीं। और आप उन्हें यह कहने के लिए दोष नहीं दे सकते, ऐसे में हम इसे और क्यों सहेंगे, क्योंकि आप एक खोखले विजन के लिए इतना भुगतान क्यों करेंगे। और यह एक उचित सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। लोग ऐसे फैसले चाहते हैं जो इस तथ्य पर आधारित हों कि अमीरों को अधिक भुगतान करना चाहिए। वे जानते हैं कि ब्रिटेन में कर का भुगतान करने की क्षमता यही मौजूद है, और वे जानते हैं कि उनके पास यह नहीं है। वे जानते हैं कि सरकार को और अधिक करने की आवश्यकता है, और वे चाहते हैं कि वह और अधिक करे, और वे जानते हैं कि ब्रिटेन पतन के दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप वे एक और बात जानते हैं, वह ये कि ब्रिटेन के पास कोई आर्थिक योजना नहीं है, और रेचल रीव्स के पास स्पष्ट रूप से कोई योजना नहीं है, और वे यह भी जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उन्हें एहसास है कि उनके पास कोई योजना नहीं है क्योंकि वह वित्त के डर में जी रही हैं। और वह ऐसा क्यों कर रही हैं? खैर, वह असामाजिक नवोदारवादी दावे को स्वीकार कर रही हैं कि करों से खर्च चलता है और बजट को संतुलित करने के लिए उधार लिया जाना चाहिए। वह ऐसा कर रही हैं भले ही उन्हें बेहतर पता हो। मैं इस तथ्य के लिए उन्हें श्रेय देता हूं कि उन्हें बेहतर पता होना चाहिए, और फिर भी वह ऐसा कर रही हैं। वह जानबूझकर नौकरियों में कटौती कर रही हैं। वह आय और आर्थिक क्षमता में कटौती कर रही है क्योंकि वह सच जानती है, फिर भी वह झूठ के आगे झुक रही है। वह घरेलू सादृश्य को बढ़ावा दे रही है जो कहता है कि सरकार को उसकी मां की तरह घर का बजट चलाना चाहिए, भले ही उसे थोड़ी भी समझ है, और बैंकिंग में अपने पिछले करियर के परिणामस्वरूप उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है जिसके बारे में वह बात करना पसंद करती है, तो उसे पता होना चाहिए कि यह गलत है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि पूर्ण वित्त पोषण नियम जो कहता है कि घाटा होने पर हमें उधार लेना होगा, वह 1998 में बनाया गया कुछ है, यह वास्तविक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है, यह उसके राजकोषीय नियम से अधिक कोई नियम नहीं है, ये केवल बनाया गया है। उसे पता होना चाहिए कि सरकार हमेशा खुद को फंड कर सकती है। उसे पता होना चाहिए कि उसने ऐसा किया है। आखिरकार वह कैसे सोचती है कि 2008 के वित्तीय संकट और कोविड संकट के बाद सरकार ने खुद को फंड किया? इसलिए उसे पता होना चाहिए कि तपस्या का उसका विकल्प वैचारिक है और आवश्यक नहीं है। तो वह यह विकल्प क्यों चुन रही है? ठीक है, इसका एक ही जवाब हो सकता है कि वह शहर के डर में जी रही है। वह इस डर में जी रही है कि शायद वे उसे वह धन न दें जिसकी उसे जरूरत है, जबकि वास्तव में उसे उनके धन की जरूरत नहीं है। वह खुद को धन मुहैया करा सकती है और उसे उनसे धन जुटाने के लिए अपने रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे उसके साथ नहीं खेलने का फैसला करते हैं तो वह बैंक ऑफ इंग्लैंड से उधार ले सकती है और न ही उसे हमारे वाणिज्यिक बैंकों को उनके केंद्रीय बैंक आरक्षित खातों पर जोखिम मुक्त ब्याज का भुगतान करके सब्सिडी देने की जरूरत है। वह सचमुच उन्हें फिरौती के लिए पकड़ सकती है बजाय इसके कि वे उसे फिरौती के लिए पकड़ें, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी और इसके परिणामस्वरूप वह अमीरों को सब्सिडी देने के लिए गरीबों पर कर लगा रही है। वह असली समस्याओं को जस का तस छोड़ रही है। नतीजतन वह अत्यधिक एकाधिकार संचालित या किराए पर लेने वाले एकाधिकार वाले मुनाफे पर कर नहीं लगा रही है जो घरों को कर्ज और गरीबी में छोड़ रहा है, क्योंकि वे अपनी उपयोगिताओं के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। वे अपने फोन के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। वे अपनी रेल यात्रा के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। वे बहुत सी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जिसमें सुपरमार्केट से खरीदी गई हर चीज शामिल है, क्योंकि लोग दावा करते हैं कि ये एकाधिकारवादी हैं, लेकिन वे हैं भी। ब्रिटेन में खुदरा खाद्य बिक्री में टेस्को की हिस्सेदारी 1/4 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह और दूसरे सुपरमार्केट ओलिगोपोलिस्ट बन गए हैं और इसके परिणामस्वरूप वे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, भले ही मार्जिन बहुत कम हो। वह सट्टा वित्त को बहुत ज्यादा कमाने दे रही है और कर का दुरुपयोग कर रही है। हम जानते हैं कि छोटी कंपनियां हर साल 14 बिलियन पाउंड का भुगतान नहीं कर रही हैं, और क्या हमने बजट में इस पर ध्यान देने के लिए किसी उपाय के बारे में सुना है जिसका मतलब होता कि अगर उन्हें बजट को अपने हिसाब से संतुलित करना होता तो वे अन्य क्षेत्रों में और ज्यादा उदारता दिखा सकती थीं? नहीं, हमने एक शब्द भी नहीं सुना। उनकी महत्वाकांक्षा हर साल करीब 2 बिलियन जुटाने की है। यह लक्ष्य इतना छोटा है कि हास्यास्पद है। वह मुद्दों को नहीं उठा रही हैं। वह हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहे दुरुपयोग को चुनौती नहीं दे रही हैं और उनकी ओर से खोखले विकास के दावे किए जा रहे हैं। वे खोखले हैं क्योंकि देखभाल को नजरअंदाज किया गया, शिक्षा को नजरअंदाज किया गया, हरित परिवर्तन को नजरअंदाज किया गया, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया गया और नवाचार को नजरअंदाज किया गया। आप उन क्षेत्रों की सभी जरूरतों को पूरा किए बिना विकास नहीं कर सकते, और इसलिए जब विकास विफल हो जाता है, जैसा कि होगा क्योंकि वह चीजों पर पूरी तरह से विचार नहीं कर रही है जैसा कि उसे करना चाहिए, तो उसे फिर से कटौती करनी होगी। हम मौत के भंवर में हैं। कटौती के बाद क्षमता में कमी आती है, उसके बाद धीमी वृद्धि होती है और उसके बाद और कटौती होती है, और यह कोई रणनीति नहीं है। यह धन के नाम पर एक प्रबंधित गिरावट है। वह शहर की इच्छाओं का अनुपालन कर रही है। वह परिवर्तन या उद्देश्य या भविष्य नहीं दे रही है। वह अभी भी दावा करती है कि पैसा नहीं है, जबकि इसे बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। इससे बड़ा विरोधाभास या विफलता का इससे बड़ा संकेत नहीं मिल सकता। सार्वजनिक सेवाओं को प्रतिबंधित करने, लोगों को दोष देने और धन की रक्षा के लिए पुराना झूठ बार बार दोहराया जाता है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन पर शासन कौन करता है? क्या वह वास्तव में शासन कर रही है या उसने लंदन शहर के रूप में असामाजिक नवउदारवादी पूंजीवाद के हितों के लिए अर्थव्यवस्था को आत्मसमर्पण कर दिया है? ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है और अब लेबर पार्टी का एकमात्र काम अपनी प्राथमिकताओं को लागू करना है। हम बेहतर कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय बैंक के आधार पर सार्वजनिक निवेश कर सकते हैं, जिसे मैंने अपने वैकल्पिक बजट में बढ़ावा दिया है, जिसका लिंक नीचे दिया जाएगा। वह संपत्ति पर कर लगा सकती हैं, जैसा कि मैंने उस वैकल्पिक बजट में भी प्रस्तावित किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं करने जा रही हैं। वह बैंकों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर सकती हैं, जिसकी लागत वर्तमान में शायद 20 बिलियन पाउंड प्रति वर्ष है और जिसे उन्हें प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। वह सार्वजनिक सेवाओं को उत्पादक संपत्ति के रूप में फिर से बना सकती हैं और वह एक ऐसा राजकोषीय नियम बना सकती हैं जो पूर्ण रोजगार और हमारे जलवायु दायित्वों को पूरा करने पर केंद्रित हो। दूसरे शब्दों में, वह लोगों और ग्रह को बाधाओं के बजाय उद्देश्यों के रूप में देख सकती हैं। दूसरे शब्दों में, वह एक साहसी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं। वह सरकार की शक्ति का उपयोग करके सभी को लाभ पहुंचा सकती हैं। वह अर्थव्यवस्था को सचमुच प्रबंधित करने के लिए लोकतंत्र का उपयोग कर सकती हैं। हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है, लेकिन बिना किसी विजन के। राचेल री न केवल साहसी नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल विपरीत हैं। हमारे पास ट्रेजरी के प्रभारी एक कायर राजनीतिज्ञ हैं, और हम सभी इसकी कीमत चुका रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? मेरा मानना है कि हमें एक ऐसे चांसलर की जरूरत है जो कल्पनाशील और साहसी हो और लोगों की सेवा करने वाली योजनाएं बना सके। कोई ऐसा जो देखभाल, निवेश और उम्मीद की राजनीति का प्रबंधन कर सके। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमें यही चाहिए, या आपको लगता है कि रेचल री ठीक काम कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि हमें सरकार में और भी कटौती करनी चाहिए? हमें बताएं। नीचे एक पोल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, क्योंकि ये वास्तव में YouTube पर इस बात को फैलाने में हमारी मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप इस वीडियो के नीचे दिए गए सेक्शन को देख सकते हैं जहां और भी बहुत कुछ लिखा है, और वहां आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो से संबंधित ब्लॉग एंट्री के विशिष्ट लिंक के लिए उस पर जाते हैं तो आपको इस वीडियो की एक ट्रांसक्रिप्ट और बहुत सी अन्य संबंधित सामग्री मिलेगी। साथ ही एक चैट GPT प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, जिसका उपयोग आप इस वीडियो की सामग्री पर अपने सांसद को एक पत्र लिखने के लिए कर सकते हैं, जो आपको एक प्रचारक में बदल देगा, जो कि एक अच्छी बात होगी। अंत में, अगर आप हमारे द्वारा किए जा रहे काम की सराहना करते हैं तो क्या आप हमें कुछ दान दे सकते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया है, या आप मेरे ब्लॉग पर एक पा सकते हैं जहां एक कॉफी बटन है जिस पर लिखा है कृपया मुझे एक कॉफी खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे।